ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से 12वां अध्याय भक्ति योग 5वां श्लोक। इस पे हम लोग शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका को भी देखेंगे। इसका अनुवाद आप लोग देख पाओगे, उम्मीद है कि टीवी पर डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। मेरे पीछे बोलिए, क्लेशोधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसां अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए इस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो एक बात यह है कि निराकार के प्रति आसक्त क्यों है, क्योंकि भगवान की सेवा के बारे में नहीं जानते हैं। और प्रगति कर पाना क्यों कठिन है, उसको हम चर्चा करेंगे। और एक अमेजिंग बात भगवान बोल रहे हैं, सदैव ही दुष्कर होता है। ऐसा नहीं है कि पहले जमाने में होता होगा और अब नहीं होता होगा, हमेशा ही दुष्कर होता है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तात्पर्य, आध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है, ज्ञान योगी कहलाता है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, वे भक्ति योगी कहलाते हैं। स्पष्ट है, तो आप जानते हैं किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ को समझाना नहीं है। यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। पहला अंतर क्या देखा आपने भक्ति योग में और ज्ञान योग में? साध्य की दृष्टि से क्या अंतर है भक्ति योग में और ज्ञान योग में? बोलिए, जो गोल है साध्य है, उसमें क्या अंतर है? ज्ञानियों का साध्य क्या है?
निराकार ब्रह्म,
निराकार ब्रह्म। और भक्ति योग का साध्य क्या है?
भगवान की सेवा, और
भगवान की सेवा, भगवान का प्रेम। और साधन में क्या अंतर है?
हम लोग श्रवण कीर्तन, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं,
जो कि बहुत आसान है, क्योंकि हम दिन भर कुछ बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और उसी प्रवृत्ति को भगवान में समर्पित करना है। और इनका साधन क्या है? इंद्रियों को रोकना, इंद्रियों की सारी बाह्य वृत्ति से रोकना, अपने मन को अंदर केंद्रित करना और ब्रह्म का साक्षात्कार करने का प्रयास करना, जो कि बहुत मुश्किल है। यहाँ पर ज्ञान, हाँ ठीक है, इसलिए अंतर आप देख लीजिएगा, साध्य और साधन दोनों की दृष्टि से अंतर है। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है, किंतु है अत्यंत कष्टकारक। क्या ज्ञान योग व्यक्ति को भगवान के धाम तक पहुंचाएगा? पार्थ प्रभु, कहाँ पहुंचाएगा? निराकार ब्रह्म तक। तो जब यहाँ क्यों बोल रहे हैं कि वहीं तक पहुंचाएगा, उसी लक्ष्य तक पहुंचाएगा? नहीं,
दोनों ट्रांसेंडेंटल है, तीनों मोड।
यस, दोनों ही दिव्य स्थिति है। निराकार ब्रह्म भी दिव्य स्थिति है और भगवान से ही आश्रित है, भगवान से संबंधित है, इसलिए ये कहा जाता है कि वो भी भगवान तक पहुंचना है। लेकिन जैसे उदाहरण दिया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी बंगले में गया है, तो बंगले की गार्डन तक आया है, बंगले की चार दीवारी तक आ गया, तब कह सकते हो बंगले तक पहुंच गया। और वो कोई इसकी गेट खोल करके अंदर चला जाए तो और पहुंच गया, लेकिन अंदर जाकर मालिक से मित्रता करे, बातचीत करे, तो और गहरी पहुंच है उस बंगले में। तो उसी प्रकार से अंतर है सब में। जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। इसका सबको समझाने का प्रयास करें, भक्ति योग देहधारी के लिए स्वाभाविक क्यों है और सुगम क्यों है? ओके, पार्थ प्रभु बताएंगे। यस,
जीवात्मा का नित्य इससे स्वरूप है ये भगवान की सेवा।
ये बहुत अच्छी बात है, नित्य स्वरूप है कृष्ण की सेवा करना। और दूसरा का है कि जीवात्मा हमेशा क्रियाशील रहता है, तो क्रियाओं को बंद करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, क्रियाओं को केवल कृष्ण की तरफ उन्मुख करने के लिए बोला जा रहा है। इसको आचार्य भी समझाएंगे, आगे देखिएगा। जीव अनादि काल से देहधारी है, सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है, ये समझ रहे हैं इसका अर्थ। कंडीशन सोल मतलब कंडीशन हो गई हमारी, कंडीशनिंग हो गई है हमारी, बीमारी हो गई कि हम अपने आप को शरीर मानते ही हैं। कितना भी बोला जाए कि हम शरीर नहीं है, शरीर नहीं है, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं कि आप शरीर नहीं है। स्पेशली जब आपको भूख लगती है तब हम लोग शरीर हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? प्रसाद पाने के बाद यदि आप क्लास देंगे तो आप कहेंगे हाँ हम लोग शरीर नहीं है, और प्रसाद लेने से पहले अगर बोलेंगे नहीं नहीं हम लोग शरीर हैं, शरीर हैं, पहले इसको ठीक कर लेते उसके बाद हम आगे कुछ करेंगे, या बीमार हो जाते तो हम लोग प्रभावित हो जाते। तो इसलिए शरीर को बहुत कष्ट देने वाले प्रयास या ऐसा कुछ प्रयास जिसमें आपको इंद्रियों से विपरीत चलना हो, ये बहुत मुश्किल होता है। अतएव भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि उसमें मन, उसके मन में कोई शारीरिक बोध रहता है जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ध्यान देना चाहिए कि विग्रह की सेवा करना मात्र इस सुविधा का उपयोग मात्र नहीं है। अर्थात कोई व्यक्ति भक्ति योग कर रहा है, जब विग्रह को सेवा करता है तो वो साक्षात कृष्ण की सेवा करता है, केवल उसको इसका अनुभव करना मात्र है, और वो प्रेमावस्था में प्राप्त होता है। जब प्रेमावस्था होती है, भाव अवस्था होती है, तो व्यक्ति समझ पाता है कि भगवान के विग्रह की सेवा मैं साक्षात कर रहा हूँ, भगवान के रूप में मैं डायरेक्ट भगवान की सेवा कर रहा हूँ जब भगवान के विग्रह की सेवा कर रहा हूँ। पहले भी सेवा करता है लेकिन समझ में नहीं आता उसको, लेकिन उसके लिए करना बड़ा आसान है। अब ऐसे व्यक्ति का चिंतन करिए या ऐसे वस्तु का चिंतन करिए जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता। ये आपने पहले हाथ खड़े कर दिए, सही बात है, बड़ा मुश्किल है। अब मैं बोलूं ऐसे वस्तु को खाइए जिसे खाया नहीं जा सकता, आप ये क्या बोल रहे हैं, इसको खा नहीं सकते, उसे कैसे खाने के लिए बोल रहे हैं, जिसको चिंतन नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी वस्तु है जो अपरिवर्तनशील है? ऐसी कोई वस्तु आप जगत में देखते नहीं हो तो चिंतन कैसे करोगे? इसीलिए जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन वाले हैं वो कहते हैं शून्य का ध्यान करो। ब्रह्म जो है वो भी शून्य नहीं है, वो दिव्य है, ये बात समझना चाहिए। लेकिन उसका अनुभव कर पाना एक देहधारी के लिए बहुत मुश्किल है। निसंदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है, यही बात मैं समझा रहा था अभी आपको। ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि अरे भाई आप निराकार का ये उपासना नहीं कर पाते हैं तो आप साकार की उपासना करें। ये पता है आपको भारत में बहुत बड़ी प्रचलित बात है कि लोग जब तक निराकार की उपासना नहीं कर पाते तब तक साकार की पूजा करो, और उसके बाद उच्चतर अवस्था है कि निराकार अवस्था में आप आ जाएंगे, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन भगवान इस बात का खंडन कर रहे हैं। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तैलचित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों ना अभिव्यक्त किया जाए, वे वास्तव में भौतिक नहीं होता। परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। ये आप लोगों को समझ, आप लोग सब जानते ही हैं, लेकिन थोड़ा समझाना जरूरी है, समझना आवश्यक है, क्योंकि भगवान की शक्ति है माया, इसलिए भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के प्रभाव से भौतिक वस्तुओं में भी अपने चिन्मय शक्ति को प्रकाशित कर सकते हैं, चिन्मय स्वरूप को प्रकाशित कर सकते हैं। इस संबंध में क्या नाम है उनका, रेतद्विज महाराज कोट कर रहे थे, कह रहे थे कि भगवान के जितने भी अवतार हैं वो उनके अर्चावतार में सम्मिलित हो जाते हैं ताकि जीवों पर कल्याण कर सकें। और इस चीज़ को प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो व्यक्ति बहुत पापी होता है वो भगवान को देख नहीं सकता। क्या आपको भगवान दिखते हैं? ऐसे नहीं दिखते। तो हमारे जीवन में पाप है, इस कारण से अशुद्धि है, इस कारण से हम नहीं देख पाते हैं। तो इस कारण से भगवान कृपा करके विग्रह के रूप में आते हैं ताकि समान व्यक्ति को भी साक्षात भगवान को देखने का मौका मिल जाए। ये भगवान की कृपा है। तो लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो मूर्ति है। इसी प्रकार से जब भगवान आए थे आज से 5-4 साल पहले साक्षात, भगवान को देखना देवताओं के लिए भी मुश्किल है। कि कल मैं दशम स्कंद पढ़ रहा था, एक इंटरेस्टिंग बात है कि माता भूमि सत्यलोक नहीं गई थी ब्रह्मा जी के पास, वो वैराज ब्रह्मा के पास गई थी जो मेरू पर्वत के ऊपर उनका जो ऑफिस है वहां पे गई थी। फिर वो वहां से ब्रह्मा जी जाते हैं क्षीर सागर के पास, और वहां पे भी उनको भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त नहीं होते। तो आप सोचिए कि भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं इतनी आसानी से, मुश्किल से होते हैं, तो भगवान विष्णु के स्रोत कृष्ण के दर्शन कितनी मुश्किल से होते होंगे। थोड़ा विचार कीजिए कि भगवान कृष्ण स्वयं रूप कृष्ण ब्रह्मा जी के दिन में केवल एक ही बार आते हैं, अन्यथा भगवान विष्णु का ही दर्शन प्राप्त होता है, और वो भी बड़ी मुश्किल से होता है। तो सोचिए कृष्ण का दर्शन प्राप्त करना कितना मुश्किल है। लेकिन वही कृष्ण जब आज से 5-4 साल पहले आए तो लोग सोच रहे तो सामान्य मनुष्य है। उसी प्रकार से जब भगवान अपने विग्रह के रूप में आते हैं सोचते हैं तो मूर्ति है, और ये सब नारकीय बुद्धि है, ये अपराध है भगवान के प्रति। यहाँ पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है। सड़कों के किनारे पत्र पेटिकाएं होती हैं जिनमें यदि हम अपने पत्र डाल दें तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृति कहीं देखे जो डाकघर द्वारा स्वीकृत ना हो तो उससे वही कार्य नहीं हो सकेगा। ये सबको आप लोग जानते हैं, उदाहरण को पोस्ट बॉक्स वाला उदाहरण है। इस संबंध में मैं एक उदाहरण और देता हूँ। मैं बाली में प्रचार कर रहा था तो वहाँ पे मैंने कहा प्रभु जी 2000 रुपये का नोट लाइए, वहाँ पे 10,000 का नोट चलता है, 10,000 का नोट लाइए। दे दिया, उन्होंने कहा घबराइए मत, हम कुछ नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा लाइए थोड़ा समोसा लाइए, इस पर हम खाएंगे। अरे नहीं नहीं, समोसा कैसे खाएंगे, इसके नोट वही है, आप प्राय आप पेपर कप लेते भी हैं तो समोसा खाते भी हैं, तो क्या यहाँ पे अगर बात की जाए तो क्या 2000 के नोट के ऊपर 2000 का नोट चल रहा है क्या? हाँ 2000 चल रहा है ना, तो 2000 के नोट के ऊपर समोसा चटनी रख के खाएंगे? हम नहीं खाएंगे, क्योंकि वो पेपर गवर्नमेंट के द्वारा सत्यापित है। और आपको पता है जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस पर रख के खा भी सकते थे आप, उस पेपर की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि सरकार के द्वारा वो मान्यता प्राप्त नहीं है। उसी प्रकार से भगवान का विग्रह क्योंकि शास्त्र अनुमोदित है, इस कारण से उससे हमारी सेवा भगवान को स्वीकार्य होती है। इस प्रकार ईश्वर ने विग्रह रूप में, जिसे अर्चा विग्रह कहते हैं, अपना प्रमाणिक वैध स्वरूप बना रखा है। यह अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। देखिए, जो मिस्टेक नास्तिक लोग कर रहे थे कृष्ण को एक सामान्य मनुष्य मानने का, वही गलती भक्तों को भगवान के विग्रह के संबंध में नहीं करनी चाहिए। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? क्या समझ रहे हैं? ओके,
विग्रह को कोई पत्थर का मूर्ति या धातु का वो नहीं समझना चाहिए।
भक्तों को बहुत सतर्क करना चाहिए और इसके द्वारा हम बहुत सारे अपराधों से बच सकते हैं। भगवान को अर्पित फूल पाम नहीं रखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि ना पाम रखा जाए। जो भी भगवान के संबंधित वस्तु है उनको सम्मान देना चाहिए, ये हमारे लिए अभ्यास की भी बहुत आवश्यक है। वही गलती हम ना करें जो नास्तिक लोग 5000 साल पहले कर रहे थे, उसके बाद भी करते हुए थे। ये पढ़ लिया नाम ने, यह अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। और ये ध्यान देना चाहिए कि पृथ्वी पे ही नहीं, 5वें स्कंद में आप पढ़ते हो विभिन्न द्वीपों में भी भगवान विग्रह के रूप में है और अपनी सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव वे अर्चा विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो। समझा दिया मैंने, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं उनके लिए मार्ग कठिन है। सीधे कैसे समझ पाता है भक्त, भगवान को सीधे कैसे प्राप्त कर लेता है? क्या सरलता है?
इंद्रियों का उपयोग, इंद्रियों के द्वारा भक्ति करेंगे और भगवान को प्राप्त कर रहे हैं, प्यूरिफाई होके।
यस, भगवान को देखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उन लोगों को, और भगवान को पहले दिन से ही भक्त देखने लगता है विग्रह के रूप में, बहुत सिंपल है। और उनको माला पहना सकते हैं और अन्य सेवाएं कर सकते हैं जिनकी महिमा आगे के श्लोकों में वर्णन किया जाएगा, कैसे भगवान के लिए किए गए कर्म भगवान का धाम दिलाने के योग्यता जीव को दे देते हैं। ठीक है, तो अब इन लोगों को क्या करना होता है जरा देख लीजिएगा। उन्हें उपनिषदों, यानी कि जो निराकारवादी हैं उनके लिए, उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है। उन्हें भाषा सीखनी होती है, इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है। जो इंद्रियों के परे वस्तु है, जो आँख, जिसको आप आंख से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, नाक से सूंघ नहीं सकते, चख नहीं सकते, ऐसी अनुभूति को आपको अनुभूत करना है। कितना मुश्किल है ना, भाषा ही नहीं समझ में आ रही कि मैं करना क्या है। और इन समस्त विधियों को ध्यान रखना होता है। यह सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं है। कृष्ण भावनामृत में भक्तिरत मनुष्य मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्चा विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा तथा मात्र भगवान पर चढ़ाए गए उच्चिष्ट भोजन को खाने से भगवान को सरलता से समझ लेता है। कोई श्लोक याद आ रहा है आपको इस संबंध में? मनमना भव मद भक्तु मद याजी माम नमस्करु माम एवशस युक्त एवं आत्मान मत परायण और अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय शिवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयमेव स्फुरत अधः। आप भगवान को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते हो, लेकिन जब जीव को भगवान की सेवा में लगाओगे, जीभ को लगाओगे भगवान की सेवा में, भगवान स्वयं अपने आप को प्रकट कर देते हैं। ठीक है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्टकारक पथ को ग्रहण करते हैं जिसमें अंततः परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है। क्यों संदिग्ध बना रहता है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, क्योंकि ब्रह्म साक्षात्कार पूर्ण साक्षात्कार नहीं है। आरुह्य कृच्छेन परम पदम ततः पतंति नादृत युष्मात् पदांग्रह। इस परम पद को प्राप्त करने के बाद, ब्रह्म पद को प्राप्त करने के बाद भी गिरने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि भगवान से संबंध स्थापित नहीं होता। किंतु सगुणवादी बिना किसी संकट कष्ट या कठिनाई के भगवान के पास पहुंच जाते हैं। आगे आप इस सब का वर्णन होगा, कैसे अगर आपका मन नहीं भी लगता है, खाली इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो भी भगवान के पास पहुंच जाएंगे, ये सब आएगा। ऐसा ही संदर्भ श्रीमद् भागवत में पाया जाता है। यहाँ यह कहा गया है कि अंततः भगवान की शरण में जाना ही है, इस शरण जाने की क्रिया को भक्ति कहते हैं। तो यदि कोई ब्रह्म क्या है और क्या नहीं इसी को समझाने का कष्ट आजीवन उठाता रहता है, तो उसका परिणाम अत्यंत कष्टकारक होता है। तो आप समझा सकते हो कि कष्टकारक क्यों होता है, फिर से समझाइए, माइक पे बोलिएगा।
उसके ब्रह्म पद को प्राप्त करने के बाद भी नीचे गिरने की संभावना बनी
रहती है। एक बात बिल्कुल सही, और ये तो साध्य अवस्था भी अनस्टेबल है, और साधन अवस्था में बड़ी मुश्किल है,
विधि है वो भी कष्टकारक,
बहुत कष्टकारक है। ऐसी चीजों का ध्यान करना है जिसको आप ध्यान ही नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। ठीक है, और ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा मन अविद्या के कारण ग्रसित होने के कारण भौतिक भोगों में भी जाता है, ये बात आप समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं तो इस जगत का माया का ध्यान नहीं आएगा। जब भगवान का भजन करते हैं तब भी कितनी मुश्किलें आती हैं कि नहीं आती, और उस टाइम अगर व्यक्ति सोचे मैं एक जगह बैठ करके उस वस्तु का ध्यान करूं जो मेरे कल्पना के बियॉन्ड है, तो फिर माया का ध्यान आना और स्वाभाविक है। कुछ आप बोलना चाहते थे वो लोग लाइट पे ध्यान करते हैं और कहते हैं कि अभी हम लाइट पे ध्यान कर रहे हैं, बाद में निराकार पे हम ध्यान करेंगे, पता नहीं। देखिए ध्येय मतलब ध्यान की वस्तु, उसका रूप होना ही चाहिए, कैसे होगा निराकार का ध्यान, कुछ समझ में नहीं आता मेरे। ओके, अतएव यहां पर उपदेश दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार के इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित रहता है। आप एक चीज महसूस कर रहे हो कि जब छठे अध्याय में भगवान बोल रहे हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, कि निश्चित रूप से मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए जब भगवान बोल रहे हैं तो कितना मुश्किल होगा मन को नियंत्रित करना। जब भगवान बोल रहे हैं कि मन को कंट्रोल करना मुश्किल है तो कितना मुश्किल होगा, उसी प्रकार से जब भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि बहुत कष्टकारक है तो वह कितना कष्टकारक होगा हम सोच नहीं सकते। हम तो उस पथ पे कभी चले ही नहीं हैं, भक्ति के प्रयास पे चल रहे हैं, उसमें ही 16 माला करने में लोगों को लगता है कि भाई पूरा परिवार सारा सब कुछ याद हो जाता है ना। 16 माला 64 माला कर दिया होता तो सब लोग ड्रॉप कर दिए होते, कोई भी नहीं आया होता, या एक घंटा क्लास होता तो सोचते हैं आज नहीं होता क्लास तो कितना अच्छा होता, आज कितनी नींद आ रही है। जीव शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा है, व्यष्टि आत्मा अर्थात वह एक व्यक्ति रहता है, ऐसा नहीं है कि वो ब्रह्म में मिल जाएगा। ठीक है, और यदि वह आध्यात्मिक पूर्ण में तदाकार होना चाहता है तो वह अपनी मूल प्रकृति के शाश्वत सत तथा गेय यानी चित पक्षों का साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन आनंदमय अंश की प्राप्ति नहीं हो पाती। आनंद की प्राप्ति जीव को कैसे हो सकती है, किसी को पता है? ओके, ठीक है, प्रभु जी ने बोल दिया भगवान की सेवा के द्वारा। सेवा के द्वारा ही जीव को सुख प्राप्त होता है, और आनंद तब मिलता है जब भगवान की सेवा करता है। और इन दो जगहों में ब्रह्म और परमात्मा साक्षात्कार में भगवान की सेवा नहीं होती। ऐसे आध्यात्मवादी जो ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होता है, किसी भक्त के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त होता है। ये प्रभुपाद समझा रहे हैं, बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। कब प्रपद्धि होगी? जब भक्तों का संग उसे प्राप्त होगा। एक जगह प्रभुपाद लिखते हैं, शायद यही होगा, इंग्लिश में लिखते हैं, ही हैज़ टू वेट फॉर द मर्सी ऑफ अ डिवोटी, शायद इंग्लिश में इसका यही होगा, आप लोग देख सकते हैं। इस समय निराकारवाद का दीर अभ्यास कष्ट का कारण बन जाता है, क्योंकि वह इस विचार को त्याग नहीं पाता। परम पूज्य भक्ति रसामित महाराज समझा रहे थे कि एक कोई भक्त उनको मिले, क्योंकि पहले वो निराकारवाद के प्रति आसक्त थे, तो भक्ति में आने के बाद भी उनको भगवान की स्वरूप की धारणा करना बड़ा मुश्किल लगता था। कहते थे, सुना है, मैं मान रहा हूँ 10-12 साल हो गया कि भगवान एक व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी वो बात जाती नहीं मन से कि अल्टीमेटली सब कुछ निराकार है, और उसमें आसक्त हो जाता व्यक्ति। अतएव देहधारी जीव अभ्यास के समय या साक्षात्कार के समय अव्यक्त की प्राप्ति में सदैव कठिनाई में पड़ जाता है। प्रत्येक जीव अंशतः स्वतंत्र है, और उसे यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि वह अव्यक्त अनुभूति उसकी आध्यात्मिक आनंदमय आत्मिक स्व की प्रकृति के विरुद्ध है। ये समझ में आई आपको लाइन? प्रभुपाद उसको समझाते हैं कि अगर आप एक रूम में बैठे हैं तो अकेले कब तक बैठे रहेंगे? खाना दे दिया जाए, बाथरूम भी हो, सब कुछ हो, अकेले कब तक बैठे रहेंगे? हमें संबंध चाहिए, संबंधों के अनुसार लोग मित्र चाहिए, उनसे बातचीत करने के लिए चाहिए। ऐसे ही अगर आप ब्रह्म में चले गए तो ठीक है, कोई कष्ट नहीं है, लेकिन कोई संबंध भी तो नहीं है, किससे बात करेंगे? तो ऐसी इसी कारण से वो संबंध वहाँ मिलने ना मिल पाने के कारण व्यक्ति भौतिक जगत में आ जाता है। और प्रभुपाद इसको फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट श्लोक में बताते हैं, फर्स्ट चैप्टर के, कि जो निराकारवादी हैं ये लोग भौतिकतावाद को बढ़ाते हैं। आपको याद है बात, हमने चर्चा किया था?
यस।
मनुष्य को चाहिए कि इस विधि को ना अपनाए। किस विधि को ना अपनाए वीरवत को? निराकार को। प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की विधि श्रेष्ठ मार्ग है, जिसमें भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रहना होता है। वीरभद्र, उसका अर्थ क्या है? भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रहने का अर्थ क्या होता है? माइक पे बताइएगा। क्या पूरा दिन हम हरि नाम जप ही करते रहें?
मतलब हमारा जो साधना है वो भी अच्छा से करे, उसके बाद कुछ फिजिकल सेवा भी करे, इंद्रियों से इंद्रियों की अधीश्वर की सेवा करे।
यस, ये इंद्रियों से अपने भगवान, इंद्रियों के स्वामी भगवान, क्या नाम उनका, ऋषिकेश की सेवा,
ऋषिकेश की सेवा भक्ति
यस करना है। और इस सब की महिमा आपको आगे समझ में आएगी कि हाथ पैरों से भी जो सेवा की जाती है, मंदिर का मार्जन किया था, उसका क्या लाभ है। आज तो नहीं कर पाएंगे, आगे के श्लोकों में करेंगे। यदि कोई भक्ति की अपेक्षा करना चाहता है तो नास्तिक होने की ये उपेक्षा होना चाहिए। यदि कोई भक्ति की उपेक्षा करना चाहता है तो नास्तिक होने का संकट रहता है। अतएव अव्यक्त विषयक एकाग्रता की विधि को, जो इंद्रियों की पहुंच के परे है, जैसा कि श्लोक में पहले कहा जा चुका है, इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश नहीं दिया है, तो भगवान नहीं कह चाहते हैं अब हम ऐसा करें। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका को हम देखेंगे। यह श्लोक उनके थोड़े निम्न स्तर का वर्णन करता है। किनके? जो लोग अव्यक्त में आसक्त हैं, जो लोग केवल ब्रह्म के प्रति आसक्त होते हैं, और केवल ब्रह्म नहीं होना चाहिए, ब्रह्म का ही साक्षात्कार करने की इच्छा रखते हैं, वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाइयों को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो प्राप्त होते हैं। उसके बाद एक्चुअली फुल स्टॉप आना चाहिए, मिस्टेक है इसमें, ये वस्तु नहीं होना चाहिए, वस्तु होना चाहिए, क्योंकि जो वस्तु गुणहीन है उसका प्रकटीकरण किस साधन से संभव है? आप समझ में आ रहे हैं डिफिकल्टी क्या है? वो निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करना चाहते हैं जो गुणों से हीन है, तो उसका प्रकटीकरण उनकी चेतना में कैसे होगा, निर्गुण ब्रह्म का? बहुत मुश्किल है। तो समझ में आ गई बात आपको, क्यों मुश्किल है वीरभद्र प्रभु? माइक आपके पास है। अत्यधिक कठिनाइयों का अनुभव इसलिए करते हैं क्योंकि वो निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करना चाहते हैं जिसमें कोई गुण नहीं है, और हमेशा हम ध्यान गुणों का करते हैं, रूप का करते हैं। ये बात समझाई जा रही है। देहधारी जीवों के द्वारा इस लक्ष्य को बहुत ही कष्ट अनुभव करके प्राप्त किया जाता है, तो इसको बात हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। ये इंटरेस्टिंग है, इंद्रियों के पास शक्ति होती है कि एक विशिष्ट प्रकार के ज्ञान को ग्रहण करने की, जैसे ध्वनि, लेकिन ऐसी वस्तु जिसमें गुण नहीं हो उसको पकड़ पाने की शक्ति इंद्रियों में नहीं होती। आप मेरी बात सुन रहे हैं? आसान है। आप लोग हवा का अनुभव कर रहे हैं अपनी त्वचा से? क्या आप टीवी पे कुछ देख रहे हैं, श्लोक देख रहे हैं, पिक्चर नहीं देख रहे आप, श्लोक देख रहे हैं, तो क्या ये सब आसान है या नहीं है? अब आप लोग आंखें बंद करिए और आप लोग निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करिए जो सारे गुणों से हीन है। और क्या ध्यान आएगा, जैसे महाराज बता रहे थे, ये व्यक्ति ध्यान शिविर में गया, वो किसान था, तो बाद में महाराज जी पूछे उसको, तुमने क्या ध्यान किया, तो कहते मैं ट्यूबवेल चला के आ गया था खेत में, उसका ध्यान कर रहा था कि मेरा पानी बह रहा होगा वहाँ पे खेत पे। तो ऐसे ध्यान चलता रहता है। ऐसे बहुत सारे लोगों को दिव्य मेडिटेशन सिखाते हैं, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, और चुपचाप बैठ करके वो कुछ ध्यान कर रहा है, क्या मालूम चले क्या ध्यान कर रहा है। मोस्टली वो ध्यान कर रहा होगा आज मेरे एग्जाम में नंबर कितने आएंगे, कैसे मैं पढ़ाई करूँगा, टीचर ने मुझको डांट दिया, ऐसे बहुत सब ध्यान चलता रहेगा। लेकिन हरे कृष्णा बोलेगा तो मालूम चलेगा ना कि हरे कृष्णा कर रहा है, ठीक है? तो ये समझ में आया डिफिकल्टी क्या है। इंद्रियों के पास सहज शक्ति है वस्तुओं को पकड़ने की, जिनके पास गुण है, लेकिन जो निर्गुण वस्तु उसको कैसे पकड़ेंगे आप, ठीक है? इस कारण से इंद्रियों को रोकना आवश्यक होता है उनके लिए जो निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। मतलब इंद्रियों को अपने सारे बाह्य विषयों से रोकना, जो कि बहुत मुश्किल है, और उसको आंतरिक रूप से केंद्रित करने का प्रयास करना बहुत मुश्किल है। परंतु इंद्रियों को रोकना नदियों को रोकने के समान है। क्या नदियों को रोक सकते हैं? इंद्रियों को रोकना बहुत मुश्किल है, और उसको सनत कुमार कहते हैं, भागवत का श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए, यद पाद पंकज, मेरे पीछे बोलिएगा, गाने का स्पेशल तरीका है इसका, यद पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या, कर्माशयं ग्रथितम उद्ग्रथयन्ति संतः, तद्वन्न रिक्तमतयो यतयो पिरुद्धा, श्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। जो भक्त जन नित्य ही भगवान के चरण कमलों के अंगुष्ठ की सेवा में लगे रहते हैं, क्या अर्थ है इसका? लोटस फीट में लोटस टो, ठीक है, वे सकाम कर्म की जोर से बंधी गांठ जैसी इच्छाओं को सरलता से लांग जाते हैं। इसको समझ लेना चाहिए, कुछ फल प्राप्त करने की इच्छा बड़ी प्रबल होती है, तो कोई बात नहीं, आप फल प्राप्त करने की इच्छा को, उस कर्म करने की इच्छा को भगवान को समर्पित कर दो। आप खाना बनाना चाहते हो, भगवान के लिए बनाओ, गाना चाहते हो, भगवान के लिए गाओ, चेंज करने की जरूरत नहीं है। उस नदी का प्रभाव भगवान की तरफ मोड़ दीजिए, इंद्रियों का जो वेग है, क्योंकि ऐसा कर पाना दुसाध्य है। अतः अभक्त जन, ज्ञानी तथा योगी इंद्रिय तृप्ति की तरंगों को रोक पाने का प्रयास करके भी ऐसा नहीं कर पाते। इस लाइन का अर्थ समझ रहे हैं? अभक्त जन जो है अपनी इंद्रियों को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा इंद्रिय भोग मिलता है तुरंत वो गिर जाते हैं, जैसे कि विश्वामित्र, सौबारी मुनि भी। अतः तुम्हें आदेश है कि तुम वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाओ। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा जीव को ऐसा इंद्रिय सुख मिलता है कि फिर छोटे निम्न इंद्रिय सुख को भूल जाता है। आप समझ सकते हो कि इंद्रियों, आज तक कोई व्यक्ति नदियों को रोक नहीं पाया है, किसी भी नदी को रोका नहीं जा सका है। नदी सहज रूप से समुद्र की तरफ बहती है, तो उसको थोड़ा कोर्स चेंज कर दिया जाए, कोर्स मतलब उसका जो बहाव का क्षेत्र है वो परिवर्तित कर दिया जाए और वो समुद्र की तरफ चली जाए, तो बहुत बढ़िया है। तो समुद्र को भगवान कृष्ण से कंपेयर किया गया है। अगर हमारी जो इंद्रियों का वेग है भगवान की तरफ जाता है, तो सहज रूप से हम लोग मुक्त हो जाते हैं, हमें प्रयास नहीं करना पड़ता। क्या इस श्लोक को आप लोग समझ पा रहे हो, या कोई कठिनाई हो रही है? ठीक है, दूसरा श्लोक, कृच्छ्रो महानिह भवार्णवम अप्लवेशाम, षड वर्ग नक्रम सुखे नति तिर्षन्ति, तत्त्वं हरेर भगवतो भजनीयमंग्रीम, कृत्वोडुपं व्यसनमुत्तर दुस्तरार्णम्। अज्ञान के सागर को पार करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि इसमें अनेक भयानक मगरमच्छ भरे पड़े हैं। मगरमच्छ का मतलब क्या हो सकता है पता नहीं नहीं क्रोकोडाइल तो समझता हूँ, लेकिन मतलब ये तो काव्यात्मक भाषा है, लेकिन इसका अर्थ क्या है समझ में नहीं आता। अभी नहीं, मैंने देखा नहीं इसका, मतलब तात्पर्य नहीं देखा। हाँ, भौतिक इच्छाएं हैं, यही तो मैं समझ सकता हूँ। जो भक्त नहीं है वे इस समुद्र को पार करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु हम तुम्हारे लिए बता रहे हैं कि तुम एकमात्र भगवान के चरण कमलों का आश्रय लो, वे समुद्र को पार करने के लिए नाव के समान है। एक इंटरेस्टिंग है कि कोई व्यक्ति अगर तैर रहा हो, चलो तैर रहा है बहुत एक्सपर्ट भी, तो कितना तैरेगा, और तैर रहा है इतने में कोई शार्क आ जाए या मगरमच्छ आ जाए तो खा जाएगी उसको। लेकिन कोई अगर शिप पे बैठा है तो उसको कोई मेहनत नहीं करनी है, खाली शिप पे बैठे रहना है, नीचे कूदना नहीं है, और शार्क से भी बचेगा और वो समुद्र पार कर जाएगा। और समुद्र पार करने के लिए खुद तैरने की कौन सी व्यवस्था अच्छी है, कोई किया है आज तक पैदल, सॉरी अपने खुद से तैर करके सागर पार किया हो, कोई मूर्ख ही ऐसा व्यक्ति विचार करेगा, है ना। तो इसलिए हर व्यक्ति अगर सागर को पार करना चाहता है तो वो एक नाव, एक सुदृढ़ नाव की शरण लेता है, वो नाव जो है भगवान श्री कृष्ण के चरण है। किंतु भगवान के चरण का हमने पढ़ लिया इसको, यह साध्य जो बहुत कठिनाई के बाद प्राप्त होता है वह भी भक्ति के समर्षण से ही प्राप्त होता है। यहाँ ये बात बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति भी करना चाहता है तो उसको भक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा। केवल ज्ञान का आश्रय लेगा तो वो निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति भी नहीं कर पाएगा। और इसको बता रहे हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति के बिना ब्रह्म के उपासक को केवल दुख प्राप्त होता है, ब्रह्म भी प्राप्त नहीं होता। क्लेशो दिक्कतरस तेषाम को बता रहे हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, ऐसा नहीं है कि चलो भाई क्लेश उठाया तो ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, क्लेश ही प्राप्त होगा, ब्रह्म भी प्राप्त नहीं होगा। ये सुना है श्लोक आपने, ब्रह्मा जी कहते हैं, तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद् यथा स्थूल तुषावघातिनाम। पढ़ेंगे अनुवाद, आप ही पढ़िए। हाँ पढ़िए पढ़िए। यस, जिस तरह
थोथी भूसी को पीटने से अन्न गेहूं नहीं मिलता, उसी तरह जो केवल चिंतन करता है उस आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता, उसके हाथ केवल क्लेश लगता है।
ये श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 14वें अध्याय के 4th श्लोक है, श्रीमद् ब्रह्मा जी की उक्ति है। तो यहाँ पे एक बात ये है कि भगवान, अब आप कंपैरिजन देख लीजिए आचार्य क्या बोल रहे हैं, कि एक भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना बहुत अच्छा साधन है, बहुत आसान है, और ये निश्चित रूप से सारे दुखों से निवृत्ति कर देगा, सारे क्लेशों से रहित है, और आपको साधन की साध्य की प्राप्ति कराएगा। ये स्पष्ट हो गया। दूसरा, अगर हम केवल ब्रह्म का अनुसंधान कर रहे हैं और भक्ति नहीं कर रहे हैं तो ब्रह्म की प्राप्ति भी नहीं होगी और केवल क्लेश हाथ लगेगा। जैसे ढेकी बोलते हैं महाराज, ढेकी समझते हैं, चावल को कूटते थे तो उसमें से चावल का छिलका अलग निकल जाएगा और चावल आ जाएगा अलग। अगर आप केवल छिलके को कूटेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, केवल पसीना होगा। तो इसी प्रकार से अगर व्यक्ति केवल ब्रह्म अनुसंधान करता है और भगवान की भक्ति नहीं करता है तो उसे केवल किस क्लेश मिलेगा, ठीक है। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। कोई प्रश्न है या जिज्ञासा है? ओके, कुछ बोलना चाहते हैं? यस,
वो जो हम लोग कह रहे हैं कि इंद्रियां हैं वो भगवान को, मतलब भगवान के जो बिगड़े हैं उनको देख पा रहे हैं, हाँ। मगर वो इंद्रियां अपने गुण से तो नहीं देख पा रहे हैं, वो तो भगवान की कृपा के कारण देख पा रहे हैं, क्योंकि इंद्रियां मटेरियल है भगवान की, वो
इंद्रियां मटेरियल हैं। लेकिन ये भी ध्यान देना चाहिए, मैटर इंगेज इन कृष्णा सर्विस बिकम्स रिगेन्स स्पिरिचुअल क्वालिटी। जैसे ही अपनी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं वो आश्चर्यजनक रूप से स्पिरिचुअल हो जाती है, हमको मालूम नहीं चलता। अन्यथा हरि कृष्ण मंत्र बोलने की शक्ति हमारी इंद्रियों में नहीं है, ये भी महाराज समझाते हैं। कई बार आपने सुना होगा, जैसे ही कोई व्यक्ति हरे कृष्ण बोलना चाहता है तुरंत उसकी, आपको दिखाई नहीं पड़ता लेकिन उसकी इंद्रियां स्पिरिचुअल हो जाती हैं। और इस चीज़ को 5वें स्कंद में प्रियव्रत महाराज के प्रसंग में बताया जाता है कि एक बार भी इसने कृष्ण का नाम लिया है, चाहे वो एकदम आउटकास्ट भी क्यों ना हो, बिल्कुल निम्न अछूत जाति का हो, तो भी पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। भले ही वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो इसमें श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भले ही आँखों से आपको दिखाई कुछ ना पड़े, लेकिन हमें शास्त्र के वचन पर स्वीकार करना चाहिए कि एक नाम उच्चारण करने मात्र से उसका शरीर परिवर्तित हो जाता। बड़ा दिव्य है, बहुत दिव्य है। और दशम स्कंद में समझाएंगे, कभी भगवान ने चाहा हम चर्चा कर पाए, कि भगवान की कृपा इतनी सूक्ष्म है कि भक्ति भी नहीं समझ पाते। इसीलिए तो महाप्रभु कहते हैं कि एक बार भी किसी ने कृष्ण का नाम लिया है तो श्रेष्ठ सभाकार उसको तुम वैष्णव मानो। हमें दिखता तो नहीं है इस प्रकार से। यस,
जैसे हम मंदिर में जाते हैं,
माइक पास में लीजिए,
मंदिर में जाते हैं तो अलग ही वातावरण अनुभव, मतलब
यस, ये भी अनुभव आप कर सकते हो। यस, कि हम जब कीर्तन में देखते, कीर्तन होते हुए देखते हैं, या आप सामान्य मंदिर में भी जाते रहे हो कभी, वहाँ पे भी आपको एक अलग वातावरण महसूस होगा। हुआ करता होगा जब आप लोग भक्ति नहीं भी थे, ऐसे भी मंदिरों में जाते थे तो आपको अलग वातावरण, एक शुद्ध वातावरण की अनुभूति होती है। और बहुत बार हमारे मंदिर में लोग आते हैं तो देखते हैं कि अरे तो बहुत एनर्जाइज्ड वातावरण, इस प्रकार से अनुभूति होती। जितनी मात्रा में हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे उस बात की अनुभूति और होने लग जाएगी। लेकिन शुरुआत से ही वो भगवान की ही सेवा कर रहा है। ऐसा नहीं कि पहले मूर्ति की सेवा कर रहा था और बाद में भगवान की सेवा कर रहा है, वो भगवान की ही सेवा कर रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है पूरी तरह से। लेकिन गुरु की बात सुन करके श्रद्धा से वो भगवान की सेवा करता है, आगे जाके भगवान की कृपा से उसको उसकी अनुभूति भी होती है कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। जैसे हमारे पार्थ कृष्ण प्रभु चंडीगढ़ के भक्त के बारे में बता रहे थे, अभी बता रहे थे ना पुजारी के बारे में, इन्होंने क्या बता रहे थे याद है, कुछ बताएंगे? इन्होंने, इनके मित्र हैं पुजारी, वहाँ पे बोला प्रभु जी आप कभी तो 20 मिनट में आरती खत्म कर देते हो और कभी और देर करते हो। तो उन्होंने बोला कभी कभी मुझे ऐसी अनुभूति होती है कि वगैरह का नाम क्या है वहाँ पे, राधा, राधा माधव जी साक्षात मेरे सामने खड़े हैं और मेरी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। आप सब लोग को अनुभव है कि कभी कभी हरि नाम में बहुत रुचि होती है और कभी कभी लगता है कि अच्छा हुआ 16 ही बोला है, 64 नहीं बोला। तो इस प्रकार की अनुभूति भक्त, यानी भगवान इस चीज़ को रिवील करते भक्त के हृदय में, ठीक है। जैसे हम चैतन्य चरितामृत में देखते हैं, महाप्रभु ने एक गोवर्धन शिला दिया था जो जिसको एक व्यक्ति उनके लिए लेके आए थे, वो रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब सेवा करते थे, उसमें लिखा है चैतन्य चरितामृत में, उन्हें साक्षात श्याम सुंदर के दर्शन होते थे उसमें, गोवर्धन शिला में। तो इस सब महाप्रभु, उसमें लिखा है कि भगवान महाप्रभु की कृपा से इस प्रकार की कृपा उनको प्राप्त हो रही थी। तो कृपा से सारा कुछ होता है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इससे भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने इस चिन्मय स्वरूप को हमारे हृदय में प्रकट करते हैं। यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, हृदय में अनुभव कर पाते, ठीक है। और कुछ बोलना चाहते हैं? सो चलिए स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद्गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।